नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और सिंगापुर ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हो रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल तेज बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश पहुंचा। और पेरिस पैरालंपिक खेलों के आज 8वें दिन भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक पदक जीतने के रिकॉर्ड के बाद और पदकों के लिए मैदान में उतरेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य और औषधि, शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर भी सहमत हुए हैं, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के बीच आज हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया। सिंगापुर में वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के विस्तार का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर का भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 160 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश है और वो भारत का अग्रणी आर्थिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत में तेज और सतत वृद्धि ने सिंगापुर की संस्थाओं के लिए निवेश के अपार अवसर खोले हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा की जागरूकता, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान की साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने पिछले महीने सिंगापुर में हुई दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय राउंड टेबल वार्ता के निष्कर्षों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर न केवल साझेदार देश है बल्कि हरेक विकासशील राष्ट्र के लिए प्रेरणा है।
मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय राउंड टेबल स्थापित होना एक अनूठी पहल है। श्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के 3.5 लाख लोग रिश्तों की मजबूत नींव हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोला जाएगा।
हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सभी कंडक्टर और AI, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भागीदारी का निमंत्रण दिया। ये प्रदर्शनी इस महीने ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच साझेदारी के लिए उत्साहवर्धक सहयोग के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। इससे पहले ब्रुनाई की अपनी सफल यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री कल लॉयन सिटी सिंगापुर पहुंचे थे। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ी है और इस गति से देश को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित करते हुए ये बात कही। ये महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं और ये नवीकरणीय ऊर्जा में पेरिस प्रतिबद्धताओं को हासिल करने वाला पहला G20 राष्ट्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो रहा है और बहुत कम समय में 100 देश इसके सदस्य बने हैं। ये बताता है कि इस संगठन का विकास एक विश्व एक सूर्य की परिकल्पना के लिए महत्वपूर्ण है।
दिस इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ब्रिंग्स द होल वर्ल्ड टुगेदर टू सेलिब्रेट द सन्स इम्पैक्ट। दिस इज ए फेस्टिवल दैट विल हेल्प अस बिल्ड अ बेटर प्लेनेट।
इस अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सौर ऊर्जा से संचालित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एकजुट प्रयासों पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन कार्बन मुक्त वातावरण के लिए एक स्थायी मार्ग के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। एक रिपोर्ट।
इस महोत्सव का उद्देश्य सौर ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति और दुनिया भर में नए अवसरों को गति प्रदान करने, सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच का मार्ग प्रशस्त करने और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका को उजागर करना है। यह महोत्सव युवाओं, महिलाओं, समुदायों, नीति निर्माताओं और निजी क्षेत्र को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक मंच प्रदान करता है। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों द्वारा भारत मंडपम में सौर प्रौद्योगिकियों और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनुभव क्षेत्रों के साथ साथ प्रदर्शनी बूथ और मंडप भी स्थापित किए गए हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। आकाशवाणी दिल्ली से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज शाम 4:10 से FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर उपलब्ध होगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि आज का दिन युवाओं के विचारों को दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है।
टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है। चतुर्भुजाई है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है। मैं मन से मानता हूँ टीचर सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है। आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, आप सदी बदल सकते हैं, ये सामर्थ्य आपके देश। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजलि दे रहा।
आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खुला रहेगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय से राष्ट्रपति भवन तक एक मुफ्त शटल सेवा चलाई जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए गजट अधिसूचना आज जारी कर दी गई। इस चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 17 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। 26 विधानसभा क्षेत्रों में 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 126A के तहत जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान मीडिया द्वारा किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणामों को लेकर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध चुनाव समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। चुनाव आयोग ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को होगी। 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल तेज वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश पहुंच गया है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल आज आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहा है। ये दल राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का आकलन करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहल से करों का दायरा बढ़ा है। आज चेन्नई में राजस्व बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि वस्तु और सेवा कर GST के राजस्व बंटवारे ने संघीय व्यवस्था की भावना को बरकरार रखा है। विकसित भारत के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दृष्टि बेहतर और मजबूत देश बनाने की है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को कर व्यवस्था के बारे में भ्रामक सूचनाएं दी जाती हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कर संग्रह के बारे में सही विश्लेषण किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में GST भुगतान करने वालों की संख्या बढ़कर 1,47,00,000 हो गई है। सरकार की प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन ने देश में शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने में मदद की है। SBM ने भारत में भी परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। ये खुलासा एक शोध पत्रिका द्वारा प्रकाशित स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर शीर्षक से कराए गए अध्ययन में हुआ है। इस अध्ययन को अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेहतर शौचालय तक पहुंच शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए परिवर्तनकारी बन गई है और उन्हें प्रसन्नता है कि भारत ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत ने 5G सेवाओं को सबसे तेजी से लागू किया है। उन्होंने कहा कि देश अपना 4G स्टैक बनाने की प्रक्रिया में है और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। आज नई दिल्ली में डाक विभाग के अधिकारियों के एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। बांग्लादेश में 5 सदस्यीय चुनाव आयोग ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि देश में स्थितियां बदल गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवल ने आज 5 सदस्यीय आयोग के इस्तीफे की घोषणा की। ये घोषणा छात्रों के नेतृत्व में हुए जन आंदोलन के कारण अवामी लीग सरकार के गिरने के एक महीने बाद की गई। पेरिस पैरालंपिक के 8वें दिन भारतीय पैरा खिलाड़ी निशानेबाजी, जूडो, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक पदक जीतने के रिकॉर्ड के बाद आज और पदकों के लिए मैदान में उतरेंगे। एक रिपोर्ट।
कपिल परमार और कोकिला ब्लाइंड जूडो स्पर्धा में आज जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे। स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह मिक्स्ड टीम रिकर्व ओपन 1x8 क्वालिफिकेशन राउंड में पूजा जत्यान के साथ भाग लेंगे। पैरालंपिक के समापन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। भारतीय एथलीटों ने इस पैरालंपिक में अब तक सबसे अधिक पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पेरिस पैरालंपिक में समापन से पूर्व भारतीय एथलीटों से कुछ और पदक जीतने की उम्मीदें हैं। भारत पदक तालिका में 5 स्वर्ण, 9 रजत और 10 कांस्य के साथ 13वें स्थान पर है। पीके घोष की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हो रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा के 3रे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। और पेरिस पैरालंपिक खेलों के आज 8वें दिन भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक पदक जीतने के रिकॉर्ड के बाद और पदकों के लिए मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।